विश्व कर्मेंद्रियों से भी पिलाया जाता है। तो ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में वाइब्रेशन से भी विष पिलाया जाता है। चलो कर्मेंद्रियों को रोक दिया, दृष्टि से चालू कर दिया, दृष्टि को भी रोक दिया, जैसे जैनियों में होता है, सन्यासियों में स्त्रियां बिल्कुल अलग, उनका संगठन अलग, और पुरुष जैन मुनि वो बिल्कुल अलग, खान पान सब अलग। फिर क्या होता है, दृष्टि से भी रोक दिया तो क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन से शुरू कर देते हैं। तो चाहे वाइब्रेशन का हो, चाहे दृष्टि का हो, चाहे वृत्ति का हो, चाहे कर्मेंद्रियों से हो, अगर होता है तो वो पतन के रास्ते पर ले जाएगा। अब ये विष पिलाने की रसम बंद करो, बाप का फरमान है मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूं, तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं। वो असुर कोई बाहर से आते हैं क्या? बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। जिन असुरों के विघ्न पड़ते हैं, जो शास्त्र में गाये हुए हैं, कौन सा असुर गाया हुआ है जिसके विघ्न पड़ते थे? कोई असुर असुरणी गाये हुए हैं? अकासुर बकासुर, उन्होंने विघ्न डाला ये कि रामायण में कथा आती है कि विश्वामित्र जी ने जब यज्ञ करते थे तो असुर उसमें विघ्न डालते थे, तारका राक्षसी और मारीच, लेकिन ये थे कौन से कुल के? रावण कुल तो था, रावण तो नाम दिया, लेकिन रावण कौन से वर्ण का था? ब्राह्मण था ना। तो वो बातें अभी रिपीट हो रही है। ये कि कोई दीवानों को कहा जाता है क्या? ये कि किसे कहा जाता है? संगठन को यज्ञ कहा जाता है। ब्राह्मण माना पवित्र, तो जो पवित्र रहता है उसको यज्ञ कहा जाता है। पवित्रों की यज्ञ को उसके संगठन को यज्ञ कहा जाता है। ऐसे तो सन्यासी भी बहुत से ऐसे पवित्र होते थे यज्ञ आदमी। सन्यासियों का जब धर्म शुरू हुआ तो पवित्र सन्यासी नहीं होते थे, तो उनका संगठन क्या? यज्ञ हो गया। यज्ञ माना ज्ञान। कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, न ज्ञान की बातों का प्रचार प्रसार होने देंगे और न खुद उसमें आगे बढ़ेंगे न बढ़ने देंगे। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान ईश्वर से आता है, अज्ञान रावण से आता है, अनेक मुखों से। तो अनेक मुखों से जो बातें आएंगी मीटिंग में, जो बात साबित हो जाएगी अनेक मुखों से, तो अनेक मुखों से जो बातें आएंगी मीटिंग में, जो बात साबित हो जाएगी, पास हो जाएगी अनेक मुखों के द्वारा, उसको तो मानेंगे। और जो एक मुख की बात है श्रीमत की, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मुख की जो बात है, उसको नहीं मानेंगे। तो ज्ञान का पोषण हुआ या विध्वंस हुआ, ज्ञान की बातों में विघ्न डाला, क्योंकि ज्ञान सिर्फ ईश्वर के मुख से आता है, अज्ञान अनेक मुखों से आता है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए क्या गायन है? विनाश ज्वाला कहां से प्रज्वलित हुई? इसलिए यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इतना समय तुम आसुरी मत पर अर्थात पांच भूतों की मत पर थे, इतना समय है, जितना भी समय तुम ब्राह्मण नहीं बने, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में नहीं बने, भाई बहन नहीं बने, तब तक तुम कौन सी मत पर थे? है रावण की आसुरी मत पर थे। मैं आत्मा हूं, मुझे शरीर से पार्ट बजाना है, ये तो कोई जानते ही नहीं। आत्मा शालिग्राम कोई कहते हैं, शालिग्राम भी कोई इतना बड़ा नहीं है, परमात्मा भी कोई इतना बड़ा नहीं है, तो ये बड़ा छोटा क्यों बनाया फिर है? परमात्मा भी स्टार मिसल, आत्मा भी स्टार मिसल, फिर बड़ा छोटा क्यों बना दिया? आत्माओं की यादगार शालिग्राम जिनमें बंधन दिखाया जाता है वो छोटे बना दिए, और सिविल सिविलिंग बड़ा बना दिया, तो छोटा बड़ा क्यों बनाया गया? कारण क्या? अकारण ही बना दिया क्या? हाँ, जो बाप की महिमा है वो बच्चों की महिमा नहीं हो सकती। बाप की महिमा अपरम्पार है, तो महिमा कैसे दिखाई जाए? बाप का वो बड़प्पन कैसे दिखाया जाए? तो उसको बड़ा रूप दिखा दिया। बाकी ऐसे नहीं कि जिस रूप में प्रवेश करता है वो कोई बड़ा शरीर होता है, नहीं, बाप बड़ा पार्ट बजाता है और बच्चे छोटा पार्ट बजाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा हैं दोनों स्टार में, आत्मा अथवा परमात्मा एक जैसे हैं। आत्मा में सारा पार्ट लुधा हुआ है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती हूँ पार्ट बजाने के लिए। श्री नारायण की आत्मा कहेगी हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राजी करेंगे। आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको गॉड फादरली नॉलेज कहा जाता है। भगवान व स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये वेद का बाप पढ़ाते हैं तो ये चक्र कैसे फिरता है, इस सत्य चक्र और रचयिता व रचना की नॉलेज कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बंदर मिटल ठहरे, अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, बस शिवालय सत्युग में राजी करने लायक बनते हो। रावण मनुष्य को बिल्कुल नालायक बनाते हैं। भारत लायक था, तुम बड़ा अकलमंद था, अब बाप फिर हीरे जैसा बनाने आया है, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि बाप हीरे जैसा बनाते हैं जो चमक मारता रहता है, ज्ञान की लाइट उसमें से निकलती रहती है। तो अगर आत्मा में से ज्ञान की लाइट न निकले, मनन चिंतन मंथन न चलता रहे ज्ञान का, तो अंधेरे में कौड़ियों का चिंतन चलता है गड्ढे में गिरने का। लेकिन जो श्रेष्ठ चिंतन चलना चाहिए मन बुद्धि में वो नहीं चलता। बाप तो हीरे जैसा बनाने आया है तो उनकी मत पर चलना पड़े। रावण मत तुमको कौड़ी तुल्य बना, दुनिया की आयु 5000 वर्ष है, उसमें ही पुरानी और नई बनती है। सत्युग त्रेता नई दुनिया, द्वापर को ली वो पुरानी दुनिया। बाप फिर से दैवी दुनिया की स्थापना करने आए हैं, फिर से मानो है। फिर से का मतलब क्या हुआ? कलप कलप। 5000 वर्ष पहले आए थे, अभी 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं। यज्ञ के आदि में भी आए थे और अब फिर से आए हैं। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेती, आत्मा ही नारगंस द्वारा बोलती और सुनती है। एक पुराना शरीर छोड़ नया लेती। आत्माओं को बाप ने ये ज्ञान दिया है कि हम बाप के साथ पहले सुई हो में, फिर हम तो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब हमारा ये अंतिम जन्म है, ये ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए देवता बनेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। ये चक्र बुद्धि में फिरना है। तुम पवित्र रहने से ही स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। ये बात उन्हों की बुद्धि में आएगी जो कलप पहले मालिक बने, नहीं बने होंगे तो पवित्रता की बात उनकी बुद्धि में नहीं आएगी। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी है, कोई तो जान करके भी ये पढ़ाई छोड़ देते। स्वर्ग में तो आएंगे कौन? जो ये ज्ञान जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, जान लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो स्वर्ग में तो आएंगे। परंतु योगी वन विकर्म विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। स्वर्ग में आएंगे परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, वही फिर पतित राजा रानी बने, अब तो वो भी राजा रानी नहीं है, फिर अभी बाप द्वारा पावन राजा रानी बन रहे हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज निराकार बाप ही पढ़ाते हैं, ये साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार से ही सुन रहा है।
मेरा बात तो नहीं सुनना,
ये साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार से सुन रहा है। उस दूर क्यों कर दिया है? ब्रह्मा के तन में ही तो बैठा हुआ है बोलने वाला, जब ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है तो उस क्यों कर दिया? नजदीक होना चाहिए कि दूर होना चाहिए? ये संगम युग की बात बताई, विशेषता बताई कि ये साकार में ब्रह्मा जो है वो भी किससे सुनता है? निराकार बाप से ही सुनता है, यानी निराकारी स्टेज में रहने वाला बाप ही। वो जो ब्रह्मा की सोल है जो शरीर छोड़ देती है, शरीर छोड़ने के बाद किसी साकार तन का आधार लेती है, कैसा साकार तन? जिसने अपना तन अर्पण कर दिया। किसको अर्पण किया? शिव को। शिव लेता है क्या? उसको यूज कौन करता है? ब्रह्म। तो तन किसका कहा जाएगा? जिसको दिया गया उसी का तन कहा जाएगा ना। तो ये साकार में जो ब्रह्मा है वो उस निराकार से ही सुन रहा है। आज में भी यदि कि आज में किसे सुना? उसी से सुना। निराकार बाप बैठ पढ़ाते हैं, बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा के लिए कहा जाएगा बैठ और खड़ी। आत्मा तो न बैठती है न खड़ी होती है। बैठ पढ़ाते हैं माना निराकारी स्टेज में बैठ पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी सुनती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। कई पढ़ते पढ़ते फिर कॉलेज भी छोड़ देते हैं, माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ है रावण की मत और दूसरी तरफ है राम की मत। रावण की मत माना अनेक मुखों द्वारा ली हुई मत, और राम की मत माना एक मुख द्वारा ली हुई मत। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है क्या? ये नहीं कहा कृष्ण की मत पर चलना है, या नारायण की मत पर चलना है, या शंकर की मत पर चलना है। नहीं, किसकी मत पर चलना है? राम की मत पर चलना है। रावण की जीत होने से अभी उधर चले जाते हैं क्या? उधर क्यों जाते हैं? अभी रस्ता कसी चल रही है, तो रस्ता कसी में रस्सी कभी राम की पाला में खिंच जाती है और कभी रावण की पाला में खिंच जाती है। जब रावण की पाला में खिंच जाती है तो समझते कि रावण ही ज्यादा बलवान, भगवान भगवान कुछ नहीं। तो जब उस तरफ खिंच जाते हैं फिर राम से दुश्मन बन पड़ते हैं क्या? उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। इनके लिए जो रावण की पाला में खिंच जाते हैं और फिर बाप के ट्रेटर बन जाते हैं। तुमने राम की शरण ली, फिर अगर ट्रेटर बन रावण की शरण ली तो राम की निंदा करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ये बरोबर राम राज्य और रावण राज्य का खेल बना हुआ है। एक तरफ कहा है तुम बच्चे बाप की शरण में आए हो, फिर कहते हैं तुम बच्चे कोई शरण में थोड़े ही आए हो, बाप तुमको आकर के अपना बनाते हैं। ये दो बातें क्यों होगी? तुम बच्चे शरण में नहीं आए हो, बाप ने आकर के तुमको शरण में नहीं लिया, बाप ने आकर के तुमको अपना बनाया। शरण में कौन आते हैं? विभीषण। दुश्मन की जो पाला का होता है वो शरण में आता है। विभीषण के लिए कहा कि शरण में आए, दुश्मन को शरण लेनी पड़ती है। तो क्या हम सब बच्चे दुश्मन हैं? शरण में आने वाले क्या दुश्मन हो गए? नहीं। अरे शरण में किसकी आते हैं? एक तो सारी दुनिया में राज्य किसका है? रावण का राज्य। तो जब सारी दुनिया में रावण का राज्य है तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? राम की शरण में जाना पड़ेगा ना। लेकिन राम आत्मा और शिव आत्मा अंतर है या नहीं है? तो शिव की आत्मा ये कहती है तुम बच्चे कोई शरण नहीं लेते हो बाप की, तुम तो बाप के बच्चे बने हो। लेकिन जब राज्य का सवाल होता है तो शिव का राज्य नहीं होता, राज्य किसका होता है? रावण का। और उसके मुकाबले में खड़ा कौन होता है? सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। तो वो एक आत्मा जो मुकाबला सारी दुनिया से करती है, 500 करोड़ की दुनिया से मुकाबला करती है, शिव के तो मुकाबला करने की बात ही नहीं। तो ये राम राज्य और रावण राज्य की बात है, ये शरण में आने की बात है। शरण में आने की बात शरण में कौन लेता है? शिव लेता है? नहीं, शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं ही, और प्रैक्टिकल में आकर के वो अपना बच्चा बनाता भी है, माला के मणके बनते हैं। लेकिन शरण में आने की बात किसके लिए? निराकार के लिए, साकार की बात। तो राम राज्य और रावण राज्य, अभी युद्ध चल रहा है, अभी राम का राज्य नहीं है, राज्य किसका है? रावण का। मधुबन में भी माया रावण आता है या नहीं आता है? मधुबन में भी माया रावण आता है, ऐसे नहीं उसके लिए दरवाजा खुला हुआ नहीं है। उसको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं लेना है क्या? रावण को मुक्ति का वर्षा मिला या नहीं मिला?
मिला
ना, तो वो आएगा नहीं आएगा? लेकिन वो राम की मत पर न चलेगा और न दूसरों को चलने देगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये बरोबर है राम राज्य और रावण राज्य का खेल बना हुआ है, इसमें कोई सच्ची बात नहीं है। सत्युग सत्व प्रधान त्रेता सत्व फिर द्वापर रजो कलयुगतम। तुम अभी सत्व प्रधान में जाएंगे, क्या कहा? तुम सत्व प्रधान में जाएंगे, तुम तमो प्रधान के संग में आकर के तमो प्रधान पार्ट शरण में जाने का रावण की शरण में जाने का नहीं बजाएंगे। बल माया रावण भी आता है रूप धारण करके, लेकिन तुम उसके चंदे में नहीं आवेंगे। बाबा आकर के सत्व प्रधान बनाते हैं, फिर 16 कला से 14 कला में आना है, फिर रावण के संग में कलाएं कम होती जाती हैं। कलाएं भी किस लिए कम होती हैं? रावण के संग में आते हैं, अनेकों के संसर्ग संपर्क में आते हैं, अनेकों की बातों में आ जाते हैं, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने भी दुर्गति पाई। अभी कलयुग में कोई कला नहीं गई। सब कहते हैं हम पतित भ्रष्टाचारी हैं, पतित दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया स्थापन हो रही है। कौन सी दुनिया स्थापन हो रही है? धाम कौन सा बन रहा है? घर कौन सा तैयार हो रहा है? घर परिवार, पावन घर परिवार, उसकी यादगार कोई बनी हुई है? पावन घर परिवार की यादगार बनी हुई है कोई? भूल गए? दिलवाड़ा मंदिर, वो तो तपस्या धाम बना हुआ है। शिवालय, घर घर में गांव गांव में शिवालय बने हुए हैं, शहर शहर में शिवालय बने हुए हैं। तो पावन दुनिया स्थापन हो रही है, बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अभी तुम भगवान के घर बैठे हो, कहाँ बैठे हो? भगवान की जय। शिवालय में बैठे हो कि वैश्यालय में बैठे हो? शिवालय में बैठे हो। चैटिंग करते रहना दृष्टि व्यक्ति कृति की। तुम ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण ब्राह्मणिया यहाँ बनते हो तो फिर तुम स्वर्ग में देवता बनेंगे। क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चक्र है, चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। क्या कहा? राजयोग सीखेंगे और ज्ञान धारण करेंगे। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने की बात नहीं, अपने अंदर धारणा करने की बात है तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माप के साथ बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज है 93वीं की अभिषेकवाणी। आज सर्व बच्चों की दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। ये दिव्य दुलार, परमात्म दुलार, पोतों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्या पोतों माने? करोड़ों करोड़ों हैं संदेश लेने वाले ईश्वरीय ज्ञान का, लेकिन दिलाराम के दुलार का पात्र सब नहीं बनते। क्या नाम दिया? दिलाराम। दिल को आराम देने वाला, दिल अंदर अंदर खाता रहे तो आराम कहेंगे? नहीं। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फखुर है कि मेरा हरेक बच्चा राजा बच्चा है। राजा होना प्रजा तो नहीं हो? अभी अपना टाइटल क्या बताते हो? क्या टाइटल है अभी संगम युग में? है राजयोगी। राजयोगी हो या कोई प्रजायोगी भी है? है राजयोगी हो या प्रजायोगी हो? प्रजायोगी माने प्रजा बनने का लक्ष्य लेने वाला, वो हुआ प्रजायोगी। और राजा बनने का लक्ष्य लेने वाला, राजा जिसको बनना होगा, डॉक्टर जिसको बनना होगा, वो योग किससे लगाएगा? डॉक्टर टीचर बनेगा उसी से योग लगाएगा ना। राजा बनने वाला राजा से ही योग लगाएगा। सेठ का सेठ के साथ मेल होगा, टीचर में जाकर के मिलेगी। तो प्रजा योगी हो या राजयोगी हो, सब राजयोगी हो। अगर सब राजयोगी हैं तो प्रजा कहां से आएगी? है प्रजा माना प्रभावित, जो दूसरों से प्रभावित हो जाए, शिव बाबा के अलावा दूसरे से प्रभावित हो जाए तो क्या बनेगा? प्रजा। प्रभावित हो जाएगा तो क्या करेगा? शिव बाबा की मत को छोड़ करके जिससे प्रभावित होगा उसी देहधारी की मत पर चल पड़ेगा तो राजा बनेगा। देहधारी कोई भी मनुष्य आत्मा राजाई दे ही नहीं सकती, राजाई सिखाई नहीं सकती। आधीन बनाएगी लेकिन अधिकारी नहीं बनाएगी। तो सारे ही अगर राजा बन जाएंगे तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना, तो ये भी जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? कि देहधारियों की मत पर भी चलने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में होने चाहिए। तो आप सब राजयोगी हो और प्रजायोगी कब बनाएंगे, कब आएंगे? आप सब तो राजयोगी हो और प्रजा योगी कब आएंगे है? आएंगे कि नहीं आएंगे? वो भी आएंगे। कब आएंगे? बाद में आएंगे या पहले आएंगे? वो भी आएंगे ना। माना अनेकों की मत पर चलने वाले भी आएंगे, अनेकों से प्रभावित होने वाले भी आएंगे। राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे, डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं है, भविष्य के पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो तो अपने स्वराज्य के राज कारोबार को चेक करते हो, जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है, ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा है। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करता। पर राज्य है माया का राज्य, पर राज्य की निशानी है पराधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर पराधीन और परवश बन जाते हैं। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को कैदी बनाता है। क्या? पहले उसको बंधन में डाल देगा अर्थात पराधीन बनाता है। बंधन कौन सा डालेगा? मुख बांध देगा, सुनाना नहीं, हाथ पांव बांध देगा, वहां जाना नहीं, आंख बांध देगा, किसी को देखना नहीं, जिभ्या बांध देगा, कुछ खाना पीना नहीं। तो पहले कैदी बनाता है, जो खिलाए जो पहनाए हाथ हथकड़ी पैन बेड़ी, तो पहले कैदी बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी आप राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्र रूपी राज्य कार्यबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। कौन? माया के राज्य अधिकारी। तो एक राज्य है व दो राज्य हैं? दो राज्यों में तो नहीं चलते, दो की राजाई के अंदर तो नहीं चलते। आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है, बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता इसको कहा जाता है। एक धर्म अर्थात एक धर्म, स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता, अर्थात दूसरे की धारणा न हो, दूसरा धर्म न हो। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले डाले राजा हो। कौन से राजा हो कि कभी ढीले कभी सम्राट? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते हो तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अभी भर रहे, अब के शेष संस्कार से भविष्य संस्कार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संस्कार का फाउंडेशन। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदाहदि की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतिद्रिय सुख परमात्मा सुख में राज्य है। कौन से राज्य में चल रहे हो? साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्मा आधार पर अतिद्रिय सुख में राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने के कुर्ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है, ऐसे ही संपत्ति। स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान गुण शक्तियां हैं, इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं। संपन्नता की निशानी है जहाँ संपन्नता होती है तो संपन्नता अर्थात संतुष्टता अप्राप्ति का नाम निशान है। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता संपत्तिवान। हद की इच्छाएं, इससे जन्म की अल्पकाल की इच्छा, इस जन्म में तो जो पाना था सो पा लिया, अब हमें कुछ नहीं पाना, पाना है तो कहाँ पाना है, भविष्य 21वें जन्म में, 21 जन्मों में, अभी इस जन्म में कुछ नहीं पाना, तो हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाए, इसको कहा जाता। आज है 16/12/93 की अभिषेकवाणी, हेडिंग दिया है शक्ति स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। झूठी बात या सच्ची बात, सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो, सच्ची बात कब होगी, साकार में होगा तो सर्व संबंधों का साकार में अनुभव होगा, साकार में होगा ही नहीं तो सर्व संबंधों का अनुभव कैसे होगा। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण आत्मा स्नेही अवश्य हैं। स्नेही ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है, फिर भी स्नेही तीन प्रकार के हैं, एक स्नेह करने वाले, दूसरे स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना, स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है, इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाप के साथ साथ और कहां भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहां भी स्नेह संकल्प मात्र भी जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कुछ मेहनत के स्नेही की तरफ स्वतः ही हो जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय हर स्थिति हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधन से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन आधार अथवा सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन ये साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है, इसलिए स्नेह दोनों तरफ अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है, इसलिए जो बाप के स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव हो उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लग पड़ते, लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते, तो इनको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह निभाने वालों में करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पांस देना, रिटर्न देना।
स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कमी होती है, कभी होती है और कभी नहीं होती है। फिर भी निभाने वाले समीप है लेकिन समान नहीं। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना मिलता है, क्या हिम्मत उमंग उत्साह की मदद मिलती है विशेष बाप द्वारा, और वो मिलती ही रहती। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता। बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते, इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। स्नेही सभी हैं, लेकिन तीन प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो मैं कौन, अपने को तो जान सकते हैं ना कि नहीं जान सकते हैं? मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये जान लिया है ना? स्नेही हो तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबर बार बन जाते। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा, बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें होती हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों द्वारा व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता रहता। सर्व प्राप्तियों का आधार वैभव व साधन नहीं बनता, लेकिन एक बाप है। साधन व वैभव रचना है और बाप रचयिता है। जिसका आधार स्वयं रचयिता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख क्या होता है, हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, पुलिस स्टाफ है तो चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बनाए लेते हैं, कोई साधनों को आधार बनाए लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनीय होता है, नहीं शोभनि का नहीं होता है, फल और फूलों का रूप रंग शोभनिक होता है, तालियों का रंग भी शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देहभान से परे होने से अनुभव होता है। देहभान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकती है, इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव हो जाता है। इसलिए समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी उनको सहारा बनाई लेते। बाप दादा देख देख करके मुस्कुराते रहते हैं, उस समय की स्थिति ऐसे हंसाने वाली होती है जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषण में एक कहानी सुनाते हो तोते की। उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ ये सोचते रहते कि एक बाप दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते कि एक बाप दूसरा न कोई, लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते कि स्कूल में तो सहारा हमको चाहिए। तो उस समय है क्या होगा, हंसी आएगी ना। जब स्थूल में सहारे बनाए लेते हैं अल्पकाल के, तो उस समय माया चांस ले लेती है, बुद्धि को ऐसे परिवर्तन करेगी जो अल्पकाल का सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा, झूठा सहारा सच्चा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रांग राइट अनुभव होता और वो रांग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर लगाए जाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाए देती है। क्या पिलर लगाती है जानते हो, जानते भी हो। यही संकल्प माया देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे चलते हैं, या ये सोचते हो कि अभी तो पुरुषार्थी है, अभी हम संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, तो अभी तो कोई ना कोई कमी रहेगी, आगे चल हम संपूर्ण बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर कमजोरी को मजबूत कर देते। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना, समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते। सर्व संबंध का सहारा एक बाप सदा बना रहे, इन सर्व संबंधों का अनुभव कम करते हो, इन सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंध की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप के सहयोग देने वाला सहारा बाप है। ये अनुभव बढ़ाओ। क्या अनुभव है, सूक्ष्म जीवन की बात नहीं बताई, कौन से जीवन की? स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व परिस्थिति में स्थूल रूप के सहयोग देने वाला सहारा बाप है। स्थूल रूप में सहारा देने वाला बाप है तो बाप कैसा होगा, सूक्ष्म होगा या स्थूल होगा? तो इस अनुभव को और बढ़ाओ। ऐसे नहीं, बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाले। वो निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, ऐसे नहीं समझना। लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। संबंध क्या सूक्ष्म होते हैं, निराकार में होते हैं? समाना संपूर्ण या समान, समान बंधन तो होता ही है साकार में, एक साकार हो एक निराकार हो तो संबंध हुआ। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो तो इस अनुभूति को गहराई से समझो। गहराई से समझे क्या? निराकार को और आकार को समझने में गहराई नहीं है, और साकार को और स्थूल बात को समझने में गहराई है। इसको गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। तो ये अल्पकाल के वैभव साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, न कोई व्यक्ति आकर्षित करेगा। ये कब आकर्षित करते हैं? जब बाप के साकार स्वरूप को, स्थूल स्वरूप को गहराई से नहीं समझ पाया है तो व्यक्ति वैभव या साधन अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा के प्रति कार्य में लाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र। इसको कहा जाता है इसलिए में समाई हुई समानात्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन हूँ, स्नेही आत्मा हूँ, स्नेह को निभाने वाली आत्मा हूँ या सदा बाप के स्नेह में समाने वाली आत्मा हूँ। सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचयिता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का यार प्यार और नमन। दादी सदा समाये हुए हैं ना? कौन? दादी कि याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। और कोई दिखाई नहीं देता सिवाय एक बाप के। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना? कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती। और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ, मैं थी या कोई और था, ऐसे भी सोचते हैं। क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता है। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। किसकी बात हो रही है, किससे बात हो रही है? दादियों से। दादियों से बाप दादा के लिए परवश होने की बात करने की जरूरत है? क्या दादियां किसी के परवश हुई पड़ी है क्या? अज्ञतवाणी में बोला था, पांडवों को गार्ड बन करके रहना है, पांडवों को गाइड नहीं बनना है। अगर यज्ञ में पांडव गाइड बनेंगे शक्तियों के तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगा। पांडव सिर्फ गार्ड हैं, रक्षक हैं, गाइड नहीं। गाइड एक शिव बाबा। तो अगर कोई गार्ड के अधीन हो जाए, वशीभूत हो जाए तो क्या कहेंगे? अपने स्वरूप को भूल गया या ये कहेंगे कि याद है? तो परवश को अपना होश नहीं रहता। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप निमित्तात्मा ये सब देख देख करके हर्षित होते रहते हैं। क्या देख देख करके, क्या बात देख करके हर्षित होते रहते हैं? कि संगठन संगठन बढ़ता जा रहा है, विस्तार को देख करके हर्षित होना, और सार को देख करके हर्षित होना। कच्चाई कौन से हर्षण है? विस्तार में सार छुप जाता है, सार प्रत्यक्ष नहीं रहता। तो सार को देखना चाहिए या विस्तार को देखना चाहिए? आप सब निमित्त आत्मा है, ये सब देख देख करके हर्षित हो रहे। कौन सी निमित्त आत्माओं के लिए कहा? दादियों। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग माने उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ाए रहे हो। खुद परवश हो, बंधा हुआ हो तो उड़ेगा और औरों को उड़ाएगा? न खुद उड़ेगा, न दूसरों को न उड़ने देगा। क्या हम भी छूट जाए तब उड़ना? क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए, तो बाप को रहम आता है ना, घृणा नहीं आती लेकिन रहम आता है, और ये रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा सब ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है। अथक बन करके सेवा कर रहे हैं ना, निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में वो मंगाता है। अच्छा ओम शक्ति।